ओम शांति। राजयोग गीता प्रवचन के आज चौथे दिन में हम सभी ध्यान योग के विषय में और आगे देखेंगे। कल के सत्र में हम सभी ने ये बात बहुत अच्छी तरह समझी कि परमात्मा ने अर्जुन को ध्यान की यथार्थ विधि बताई, जो उसका एक सवाल बार बार उत्पन्न हो रहा था, क्या मन को वश करना सहज है। भगवान ने उसको यही बात की प्रेरणा दी कि क्यों नहीं मन को अपना मित्र बना लो, क्योंकि मन ही अपना शत्रु है, मन ही अपना मित्र है। तो क्यों नहीं मन को हम अपना मित्र बना ले, और जब मित्र बना लेते हैं तो फिर उसको जिस दिशा में हम ले जाना चाहते हैं दृढ़ता पूर्वक उस दिशा में हम उसको ले जा सकते हैं। विभिन्न तरीके से भगवान ने पहले तो मन को जीतने के लिए ही बात स्पष्ट की, लेकिन फिर एक और अल्टरनेट जैसे दिया कि मन को मित्र बना लो, और फिर एक बैठने की विधि बताई कि कैसे ध्यान में सीधा बैठना चाहिए। आज दिन तक दुनिया के अंदर कई प्रकार के मेडिटेशन की विधि बताते हैं, हर एक ने अपने अपने मन से या अपने अपने अनुभव के आधार से कई रूप से मेडिटेशन की विधि बताई या ध्यान करने की विधियां बताई, परंतु सर्वोच्च विधि भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से अर्जुन को बताते हैं कि कैसे हम अपने मन को एकाग्र करने के लिए सबसे पहले अपनी बैठक, अपना आहार विहार, शयन जागरण, ये सब बातें ध्यान के लिए अपना अपना एक रोल प्ले करती है। इसलिए इन सब बातों के ऊपर अपना अटेंशन जरूरी है, और जब ऐसे सीधा बैठ करके दृष्टि को, अंतर चक्षु को दोनों खुला रखते हुए फिर मन को योग अभ्यास में लगाएं, ये बात को स्पष्ट रीति समझाया। और तब कहा कि जैसे वायु रहित स्थान में रखे दीपक की ज्योति चलायमान नहीं होती है, लौ सीधी ऊपर जाती है, वैसे ही योग अभ्यास द्वारा जब चित्त वश में हो और योगी अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो, तब वो योग युक्त कहलाता है। ये बात बार बार भगवान अर्जुन के सामने रखते हैं कि स्वयं को आत्म स्वरूप में स्थित करो। क्यों ये बात बार बार कही गई है? क्योंकि व्यक्ति जो स्वरूप में अपने आप को स्थित करता है या मानता है, उसी की याद उसको सहज स्वाभाविक आती है। आज सवेरे के सत्र में भी हमने इस बात को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया कि जिस प्रकार एक व्यक्ति जब घर में है तो साधारण स्वरूप में है, और साधारण स्वरूप में होने कारण वो घर के कारोबार में भी अपना सहयोग देता है, साथ ही साथ अगर बगीचा है तो बगीचे में पानी भी डालता है, बच्चों के साथ भी अपना समय व्यतीत करता है। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन सुबह तैयार होता है, और मान लो कि वो अगर एक डॉक्टर है, और डॉक्टर के नाते जैसे ही वो सुबह तैयार होता है कि उसका उसके स्मृति के अंदर ये बात आ जाती है कि मैं डॉक्टर हूं, उसके लिए उसको रटने की आवश्यकता नहीं है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं। लेकिन वो स्वरूप जैसे जैसे वो तैयार होता जाता है, वैसे वैसे वो स्वरूप उसका बनता जाता है, और वो स्वरूप बनते ही उसको कौन याद आता है? हॉस्पिटल याद आएगा, दवाइयां याद आएंगी, ऑपरेशन याद आएगा, पेशेंट्स याद आएगा, किसको क्या ट्रीटमेंट देना है वो याद आएंगी। भावार्थ ये है कि उससे संबंधित बातें ही उसको स्मृति में आने लगती है। अगर मान लो कि एक व्यक्ति टीचर है, तो जिस समय वो सुबह तैयार होने लगते हैं स्कूल जाने के लिए, कि उस समय उसको अपने परिवार के सदस्य याद नहीं आते हैं, लेकिन उस वक्त उसको कौन सी क्लास को कौन सा लेसन पढ़ाना है, किसको क्या होमवर्क देना है, किसको आज छुट्टी देनी है, या किसी के साथ आज किस तरह से वो सारा लेसन कंडक्ट करेंगे, वही बातें उसको स्मृति में आती है। एक व्यक्ति जब अपने आप को पति समझता है तो कौन याद आता है? उसको अपनी पत्नी याद आती है। जिस वक्त वो अपने आप को पिता समझता है, उस वक्त उसको अपने बच्चे याद आते हैं। जिस वक्त वो खुद को बच्चा समझता है, उस वक्त उसको अपने माँ बाप याद आते हैं। तो व्यक्ति जिस स्वरूप में अपनी स्मृति को सेट करता है, उसी से संबंधित बातें उसको याद आती है और वही लोग उसको याद आते हैं। मान लो कि जिस वक्त वो डॉक्टर तैयार हो रहा है हॉस्पिटल जाने के लिए, और उसी समय उसकी माँ ने उसको कहा भी कि बेटा आते समय ये चीज लेके आना, वो हाँ हाँ करेगा, लेकिन उस समय उसकी स्मृति हॉस्पिटल से संबंधित बातों से जुड़ी हुई है, तो हाँ हाँ करने के बाद भी वो अंदर जाती नहीं है। और इसलिए वापस आने पर जब उसको पूछा जाता है कि बेटा ये चीज ले आया, तो कहेगा भूल गया, आप क्यों नहीं मंगा लेते हो। अब उस समय अगर कोई उसको कहे कि भाई आजकल तुम भूलने क्यों लगा है, वो भूलने नहीं लगा है, ये कोई उसकी भूलने की बीमारी नहीं है या उसकी मेमोरी कम हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन उस समय कहा गया, जब उसकी स्मृति घर की बातों से स्विच ऑफ हो गई थी और उस समय अपने कारोबार से वो स्विच ऑन हो गई थी, इसलिए उसने हाँ हाँ भले किया भी होगा, लेकिन फिर भी वो बात अंदर गई ही नहीं। अगर उसकी मेमोरी कम होने वाली बात होती थी तो वो दवाइयां भूल जाता था, ऑपरेशन भूल जाता था, ट्रीटमेंट किसको क्या देना है वो भूल जाता था, वो तो कहीं पर भी कुछ नहीं भूला। तो मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस वक्त जिस स्वरूप में वो स्थित है उससे संबंधित ही बातें उसको याद आएगी। इसी तरह परमात्मा अर्जुन को यही समझाते हैं कि तुम अपने आप को आत्म स्वरूप में स्थित करो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं को देहधारी रूप में देखते हो तब तक तुम्हें अपना मोह सताता रहेगा कि ये मेरे भाई है, ये मेरे वडील है, ये मेरे बड़े हैं, इसको कैसे मैं मारूंगा। यानी मारने की बात कोई व्यक्ति को नहीं है, मारना है तो वो मोह को खत्म करने की बात है, और उसके लिए विधि बताई, तुम स्वयं को आत्म स्वरूप में स्थित करो। जब आत्म स्वरूप में स्थित होंगे तो कौन याद आएगा? तो परमात्मा की याद सहज, स्वाभाविक और निरंतर बनी रहेगी। इसलिए ये बात उसको बार बार कही गई। फिर भगवान ने इस योग अभ्यास का महत्व बताया कि इस योग अभ्यास द्वारा ही योगी भौतिक एवं मानसिक क्रियाओं से उपराम हो जाता है। योग के समय हमें कोई मानसिक क्रिया या भौतिक क्रिया करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कई बार कई लोग योग का मतलब फिजिकल एक्सरसाइज से ले लेते हैं या मानसिक एक्सरसाइज से ले लेते हैं। भगवान ये बात भी यहां बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करते हैं, और इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहीं पर भी भौतिक क्रियाएं या मानसिक क्रियाएं करने की प्रेरणा नहीं दी, लेकिन योग माना ही इन सभी बातों से अपने मन को ऊपर उठाना एवं विशुद्ध मन से आत्म स्व स्वरूप में स्थित होकर के परमात्मा की याद में अति इंद्रिय सुख और आत्म संतुष्टि का अनुभव करता है। योगी की ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। इस सत्य स्वरूप में स्थित सर्व प्राप्ति स्वरूप कोई भी प्रकार के दुख से विचलित नहीं हो सकता है। आत्म स्वरूप यानी वो सतोगुणी स्वरूप में अपने मन को स्थित करता है तो उस समय वो दैहिक भान से भी ऊपर उठ जाता, जिस कारण शरीर में अगर कोई पीड़ा है, कोई दुख है, दर्द है, तो उस समय वो पीड़ा का अनुभव नहीं होता है और उसके मन को वो विचलित नहीं कर सकता है। इस योग का दृढ़ निश्चय एवं धैर्यता से अभ्यास करने से ही सफलता मिलती है। वैसे भी कहा जाता है दृढ़ता में सफलता, निश्चय में विजय। तो दृढ़ निश्चय जो कर लेता है कोई भी कार्य के लिए तो सफलता हुई ही पड़ी है। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी ये संशय भी नहीं रहता है, लेकिन जैसे सफलता हुई ही पड़ी है उस सफलता को भी वो विजुअलाइज कर सकता है। तो इसलिए ये योग की उपलब्धि के विषय में उसको स्पष्ट किया, फिर बताया कि मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो तो उसे वहां से खींचे और अपने वश में करे, क्योंकि मन का भटकने का द्वार कौन सा है? मन का भटकने का द्वार हमेशा कोई न कोई इंद्रिया होती है, और जब वो इंद्रिया चंचल होने लगती है तो मन भी भटकने का अनुभव कराता है। मन अनेक दिशाओं में भागना आरंभ करता है। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि अगर चला भी जाता है तो भी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं, अगर मन कहीं चंचलता वश भाग भी गया तो उसको वापस खींच सकते हैं, और जैसे ही उसको खींच ले और फिर उसको जोड़ने का प्रयत्न करें, क्योंकि ये तो उसकी आदत है, मन की आदत है कि उसको विचरण करने का अच्छा लगता है। यहां बैठे बैठे भी कई बार कई लोगों का मन घर में चला जाएगा, कोई कारोबार में चला जाएगा, क्योंकि मन का नेचर है कि वो एक स्थान पर स्थिर होकर के बैठ नहीं पाता है। हाँ, जहां उसकी रुचि होती है वहां स्थिर हो जाता है, लेकिन जहां उसकी रुचि नहीं तो वहां भागता रहता है, और इनिशियल स्टेज में तो बहुत भागेगा लेकिन उसमें डरने की बात नहीं है, उसको वापस खींच सकते हैं। एक उदाहरण याद आता है मुझे कि जब शास्त्रों के अंदर ये बात बताई गई है कि सागर मंथन हुआ था, और जब सागर मंथन हुआ देवताओं और असुरों के बीच में तो उस समय सबसे पहले विष निकलता है। ये कहानी तो आप सभी जानते हो, कथा तो जानते हो कि सबसे पहले विष निकलता है, और जब विष निकलता है तो वो विष की बदबू ऐसी थी जिस कारण से देवताएं बेहोश होने लगे, और जैसे जैसे बेहोश होते गए तो जो थोड़े बहुत देवताएं बच गए वो चिंतित होने लगे कि अगर इस तरह से देवताएं बेहोश होते रहे फिर तो सागर मंथन में जो अमृत कलश निकलेगा वो असुर लोग ले जाएंगे। तो फिर जो देवताएं थे वो भागे शिवजी के पास में, और शिवजी से विनंती करते हैं कि ये सागर मंथन में तो विष निकल रहा है, अब क्या किया जाए, और देवताएं तो बेहोश होने लगे। उस समय कहा जाता है कि शिवजी आते हैं और आ करके वो सारा विष ग्रहण कर लेते हैं, और सारा विष ग्रहण करने के बाद पुनः सागर मंथन आरंभ होता है। धीरे धीरे करके एक एक चीजें निकलती जाती है, वो जो देवताएं बेहोश हो गए थे उन्हें भी सुरजित कर दिया, और फिर सागर मंथन जैसे प्रारंभ हुआ एक एक चीज निकलती गई, और अंत में वो अमृत कलश निकलता है। जो अमृत कलश लक्ष्मी जी ने धारण किया मोहिनी स्वरूप लेकर के, और फिर देवताओं को पिलाया गया और देवताओं को पिलाने के बाद वो अमर हो गए। ये कथा हम सभी ने शास्त्रों में सुनी है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ये ध्यान की प्रथम अवस्था है। कैसे? तो सागर मंथन, अब हमारे अंदर सागर मंथन कौन सा है करना है, तो ये मन जो है सागर की तरह है। इसको सागर के साथ भेंट क्यों किया जाता है? क्योंकि सागर एक ऐसा द्रव्य है या ऐसा वो पानी है जहां कभी भी आप संपूर्ण इमेज नहीं देख सकते। नदी का पानी कभी इतना स्थिर हो जाता है जो संपूर्ण इमेज उसमें दिखाई देती है। तालाब का पानी भी इतना स्थिर हो जाता है जो संपूर्ण प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है, लेकिन सागर में कभी भी वो स्थिति नहीं आती है कि जो उसमें संपूर्ण प्रतिबिंब दिखाई दे। नित्य लहरें चलती रहती है, कभी छोटी छोटी लहरें चलती है, कभी बड़ी लहरें चलती है, कभी तूफान खड़ा हो जाता है। हमारा मन भी एक सागर की तरह है। क्यों? क्योंकि कोई क्षण ऐसा नहीं जब ये मन के अंदर विचारों की लहरें न चलती हो। कभी भी मन स्थिर नहीं हो सकता है, नित्य कुछ न कुछ विचार चलते ही रहते हैं। साधारण से साधारण विचारों की लहरें भी चलती रहती है, और कभी टेंशन हो जाता है तो बड़ी बड़ी लहरें चलने लगती है, और कभी कोई बात से लेकर के परेशान हो जाते हैं तो तूफान खड़ा हो जाता है। तो मन एक सागर की तरह है। अब यह सागर मंथन करना है, क्योंकि अमृत कलश अंदर ही है, बाहर नहीं है, वो अमृत कलश को निकालना है। अब ये सागर मंथन करने के लिए देवताएं और असुर कौन है? तो जो अच्छे विचार है, सकारात्मक विचार है, वो देवों के समान है, और जो बुरे विचार है, ये नहीं कि मेडिटेशन में बैठे मन अब बुरे विचार एकदम खत्म हो जाते हैं, नहीं, इतना सहज जल्दी खत्म नहीं होते, तो बुरे विचार भी बीच बीच में उभरते रहते हैं। जितना अच्छे विचार करने का प्रयत्न करते हैं उतने बीच बीच में बुरे विचार भी आते रहते हैं। तो ये अच्छे विचार देवों के समान है, बुरे विचार असुरों के समान है, और उन दोनों के बीच में ये सागर मंथन हो रहा है। अब ये सागर मंथन होता है तो सबसे पहले क्या निकलेगा? विष निकलेगा, यानी अंदर में भी जो नेगेटिविटी का विष भरा हुआ है इतने सालों से, इतने जन्मों से, वो निकलेगा। ध्यान कोई किसी का एकदम नहीं लग जाता है, सबसे पहले वो विष निकलेगा। लेकिन जब ये विष निकलता है तब कई लोग इतने घबरा जाते हैं, पता नहीं मेरा मेडिटेशन, मेरा ध्यान तो कभी लगने वाला ही नहीं है, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि जैसे ही ध्यान में बैठते इतने नेगेटिव विचार आते हैं, क्या करें? नहीं, ये विष निकलेगा। उस समय घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस समय शिव जी को याद करो, शिव परमात्मा को याद करो। भक्ति में भी इसीलिए देवताओं के मंदिर में हमने गुलाब के फूल चढ़ाए, अच्छे अच्छे फूल चढ़ाते हैं, कमल के फूल चढ़ाए, यही फूल चढ़ाए, लेकिन शिवजी के मंदिर में कौन से फूल चढ़ाए? अख के फूल, धतूरे के फूल चढ़ाए, जो सबसे पॉइजनस होते हैं, क्योंकि शिवजी ने आकर हमारे अंदर का पॉइजन खींचा है, ये कर्तव्य किया है, इसीलिए उसके मंदिर में धतूरे के फूल और अख के फूल चढ़ाए जाते हैं। इसलिए ऐसे समय पर शिवजी का आवाहन करो अपने मन के अंदर, और जैसे उसका आवाहन करते हैं वो भी आकर के वो जहर खींच लेता है, वो विष खींच लेता है। उसके बाद पुनः सागर मंथन आरंभ करो। धीरे धीरे आप अपने विचारों में एक परिवर्तन महसूस करेंगे, और जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है अच्छी दिशा की ओर हम आगे बढ़ते जाते हैं, अंत में वो अमृत कलश भी निकलेगा। और जैसे ही वो अमृत कलश निकलेगा तो हरेक ही अमृत कलश प्राप्त करना चाहते हैं, यानी बुरे विचार भी उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। बुरे विचार को इतना सहज पीछा छुड़ा देगा, इतना सहज नहीं है वो। कुछ समय तो ये संघर्ष करना ही पड़ता है, लेकिन उस वक्त वो अमृत कलश जो निकलता है उसको लक्ष्मी जी ने धारण किया। लक्ष्मी जी कौन है हमारे जीवन में? लक्षण धारण करते हैं। आज जैसे किसी की शादी होती है और किसी के घर में बहू अच्छे लक्षण वाली आ जाती है तो क्या कहते हैं? सुलक्ष्मी आई है। और किसी के घर में अगर बुरे लक्षणों वाली बहू आती है तो क्या कहते हैं? कुलक्ष्मी है। तो हमारे लक्षण ही लक्ष्मी है। तो जब वो अमृत कलश हमारे लक्षण में आता है तब वो दैवी संस्कार, वो दैवी विचार, अच्छे विचार अमरत्व को प्राप्त करते हैं। तो ये सागर मंथन की जो कथा है ये वास्तव में हमारी अपनी कथा है। इसीलिए बुरे विचार कोई एकदम पीछा छुड़ा दे, कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है कि आज हमने ध्यान की विधि सीखी माना कल से लेकर के बिल्कुल नेगेटिव विचार खत्म ही हो जाएंगे। नहीं, आज कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ या होम्योपैथी डॉक्टर के पास भी जब जाओ, किसी को स्किन की बीमारी होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, वो उसके पास जाते हैं तो क्या कहता है? वो दवाई भी देगा, परहेज भी बताएगा और साथ में सावधान भी करेगा कि जैसे आप ये पुड़िया लेंगे पहले ये बीमारी बढ़ेगी, क्योंकि जड़ से निकलेगी, अंदर का सारा जो विष है वो निकालने के लिए पहली ये पुड़िया देते हैं, और जैसे ही ये जड़ से निकल जाएंगी उसके बाद संपूर्ण ये बीमारी साफ हो जाएगी। लेकिन जब ये बीमारी बढ़ेगी तब घबराना नहीं, क्योंकि ये पहला लक्षण है उसका। ठीक इसी तरह ध्यान का भी पहला लक्षण यही है कि ध्यान हमारा सही है या नहीं है, उसका पहला लक्षण यही है कि बुरे विचार बढ़ेंगे। कई बार कई लोग सोचते हैं पहले तो मुझे कभी ऐसे बुरे विचार नहीं है, आज क्यों इतने बुरे विचार आए हैं? नहीं, ये नहीं कि पहले कभी नहीं आए थे, पहले भी आए थे, लेकिन पहले उसके विषय में जागृति नहीं थी। अब हम जागृत हुए हैं अपने विचारों के बारे में, ये अच्छे विचार है, ये बुरे विचार है। जो विष अंदर से निकला है तो वो बुरे विचार पहले चले तो है ना, तभी तो अंदर समाये हुए, कोई आज एकदम प्रकट हो गया ऐसे थोड़ी है। तो इसलिए वो विचार अपना रंग दिखाएगा, कोई एकदम सहज विदाई नहीं ले लेता है। इसीलिए भगवान अर्जुन को भी सावधान करते हैं कि मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता है उसे वहां से खींचकर अपने वश में करो और परमात्मा में लगाएं। इस प्रकार निरंतर योग अभ्यास, यह अभ्यास की जरूरत है। योग अभ्यास में रहकर आत्म संयमी योगी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, अभ्यास के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता है। बहुत सुंदर एक और उदाहरण याद आता है अभ्यास पर। एक बार जब पांचों पांडव छोटे थे तो सोए हुए थे, अर्जुन और भीम बाजू बाजू में सोए हुए थे। आधी रात हुई कि भीम अचानक उठ करके चला गया, अर्जुन की आंखें खुल गई, उसने देखा बाजू में भीम जो सोया हुआ था वो है ही नहीं। तो वो सोचता है ये भीम कहां चला गया। उठ करके वो भी बाहर निकलता है, देखने जाता है तो देखता है कि भीम जो है रसोई घर में बैठ के खाना खा रहा था आधी रात में। तो अर्जुन ने जैसे ये दृश्य देखा तो पूछता है अरे भीम तू खाना खा रहा है आधी रात को? तो भीम ने कहा बड़ी भूख लगी थी इसलिए रहा नहीं गया मैं खा रहा। अर्जुन ने कहा भले खाओ, लेकिन अंधेरे में तू कैसे खा रहा है और सीधा मुंह में ही जाता है, इधर उधर कहीं नहीं जाता है। तो भीम मुस्कुरा करके अर्जुन को कहता है, अर्जुन अभ्यास, मुझे खाने का इतना अभ्यास है कि वो इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, वो सीधा मुंह में ही जाएगा। वहां से अर्जुन ने प्रेरणा ली कि अगर भीम अंधेरे में भी खा करके वो सीधा मुंह में जाता है, अगर मैं भी अभ्यास करूं तो अंधेरे में तीर चलाऊं और निशाने को लगे, इसका नाम है अभ्यास। और उस प्रेरणा को लेकर के अर्जुन ने अपना अभ्यास आरंभ किया, तब इतना बड़ा धनुर्धर बन गया। भावार्थ यह है कि भगवान ने भी ये कहा कि मन की एकाग्रता को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए हमें भी निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। और जब आत्म संयम को लेकर के अगर अभ्यास करेंगे तो समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे एवं परमात्म सानिध्य में अति इंद्रिय सुख और परम आनंद का अनुभव करता है। और सर्व के प्रति आत्मभाव को विकसित कर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत करता है। ये उसकी और एक उपलब्धि है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत कर सकते हैं। तब बहुत सुंदर एक और प्रश्न अर्जुन के मन में आता है, जो हमारे मन में भी आ सकता है कि हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है, हठी है, बलवान है, इसलिए इसे वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता। तो भगवान ने बहुत सुंदर उसका जवाब दिया, अर्जुन निसंदेह मन चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में हो सकता है। अभ्यास करने की जरूरत है। मन को वश न करने वाले पुरुष के लिए योग बहुत कठिन है, किंतु स्ववश मन वाले पुरुषार्थी के लिए योग सहज हो जाता है। पुरुषार्थी, पुरुष के अर्थ, पुरुषार्थ माना पुरुष के अर्थ, जो पुरुष के अर्थ हम करते हैं वो पुरुषार्थी, और स्ववश के आधार पर जब पुरुषार्थ करते हैं तो मन को वश करना भी सहज है। भले वो चंचल है, हठी है, बलवान है, वायु की भांति है, लेकिन फिर भी ये नहीं कि वो वश में नहीं होता है, मन वश में हो सकता है, सिर्फ मन को समझने की आवश्यकता है। आज एक बच्चा बहुत चंचल है, बहुत तूफानी है, इतना तूफान मचाता है, इतना चंचलता करता है, पड़ोसी उसको रोकने के लिए कितना भी प्रयत्न करे लेकिन वो बच्चा वश में नहीं होता है। लेकिन जैसे उसकी माँ आती है, माँ उस बच्चे की साइकोलॉजी को अच्छी तरह समझती है कि इस वक्त ये तूफान मचा रहा है तो उसका कारण क्या है, उसको वही चीज पकड़ा देती है और वो शांत हो जाता है, शांति से बैठ जाता है। मन भी एक चंचल बच्चा है, लेकिन जब तक हम मन को समझते नहीं है तब तक उसको वश करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे ही मन की रुचि को समझने लगो, मन की आदतों को समझने लगो, फिर आप जैसे जैसे उसकी साइकोलॉजी को परखने लगते हैं और उस समय उसको वही चीज अगर मिल जाती है तो मन क्यों नहीं वश में होता है। मन सहज वश में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है मन को वश करने की। इसीलिए मन को समझने की आवश्यकता है। आज आप सभी आ रहे हैं, 3-4 दिन से लगातार आ रहे हैं, मन को अच्छा लग रहा है तभी आ रहे हैं ना। तो मन को क्या अच्छा लगा, समझो अपने मन को कि मन को क्या अच्छा लग रहा है। अगर यहां मैं बैठ करके फालतू बातें, इधर उधर की पॉलिटिक्स की बातें, यहां वहां की बातें सुनाती थी, किसी की निंदा ग्लानी चुगली सुनाती थी, तो आप क्या कहते हैं, अरे वेस्ट ऑफ टाइम है, फालतू वहां समय बर्बाद करने, तो और कहीं जाए या घर में बैठ करके कुछ और काम करे, नहीं आते थे आप। तो मन की रुचि कहां है, मन को क्या अच्छा लगता है, मन को हमेशा अच्छी बातें ही अच्छी लगती है। फालतू बातों से मन इतना ऊब चुका चुका है, मन को जरा भी उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन हम सभी क्या करते हैं, मन को हमेशा फालतू बातें देने का प्रयत्न करते हैं, और जितना फालतू बातें देने का प्रयत्न करते उतना मन चिड़चिड़ा होने लगता है, इरिटेट होता है। इसलिए आज मन बड़ी चंचलता मचाने लगा है। तो भावार्थ यह है कि मन की रुचि अनुसार उसको अच्छी अच्छी बातें हर रोज देते रहो तो क्यों नहीं मन वश में होगा, जरूर होगा, क्योंकि उसको अच्छी बातें भाती है, अच्छी लगती है, रोज उसको परसने की आवश्यकता है। फिर और एक महत्वपूर्ण सवाल अर्जुन पूछता है भगवान से कि हे भगवान, अगर पुरुषार्थ में कोई व्यक्ति असफल हो जाए, जिसके योग में श्रद्धा है पर अंत समय मन विचलित हो जाए, तो वह योग सिद्धि के बजाय किस गति को प्राप्त होता है? क्या वह छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता है? आज ये प्रश्न कई लोगों के मन का भी हो सकता है कि अंत समय सारा जीवन मानो हमने पुरुषार्थ किया भी, श्रद्धा भी है हमारी, लेकिन फिर भी अंत समय अगर विचलित हो गया तो कौन सी गति को प्राप्त करेंगे? तो भगवान ने बहुत सुंदर उसका जवाब दिया है कि पुरुषार्थी कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। कितना सुंदर जवाब है। वह पुनः जन्म पाकर अपने पूर्व जन्म के दैवी संस्कार को जागृत करता है, वो संस्कार को पुनः जागृत करता है और योग अभ्यास के मार्ग पर आकर्षित होकर के आगे बढ़ता है, जो उसकी अधूरी यात्रा है उसको पूरा करता है। और जो योगी नियम पूर्वक समस्त पापों से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से प्रगति करता है, वह श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो जाता है। योगी पुरुष तपस्वियों, ज्ञानी तथा सकाम कर्मियों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। भगवान ने अर्जुन को योगी बनने की प्रेरणा दी, तपस्वी ऋषि बनने की प्रेरणा नहीं दी, ज्ञानी खाली बनने की प्रेरणा नहीं दी। ज्ञानी तो आज दुनिया में बहुत है, लेकिन भगवान ने अर्जुन को कौन सी प्रेरणा दी कि तुम योगी बनो और समर्पण के साथ अंतर मन से योग का आचरण करो। ये सही जीवन है, ये जीवन जीने की कला उसको बताई। और इस तरह से छठा अध्याय यहां समाप्त होता है।